ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ तृतीय स्कंद अध्याय 32 कर्म बंधन अध्याय के नाम। आज इस अध्याय के 24 नंबर श्लोक। यदाश्य चित्तमर्थेषु समेषु इंद्रियवृत्तिभिः न विगुह्याति वैषम्यं प्रियम् अप्रियम् इति उतः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। कृपया दोहराइए। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तात्पर्य। दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। उसके लिए न कुछ स्वीकार्य होती है न अस्वीकार्य, क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वह जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत, उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वह समझ सकता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रकृति द्वारा दूषित होने से सब कुछ बुरा है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक, ये विषय में भौतिकतावादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावुकता होते हैं। वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता, क्योंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद तक उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और जब इस तरह गुणात्मक रूप से वह भगवान से एकरूप हो जाता है, इस तरह गुणात्मक रूप से वह भगवान से एक रूप हो जाता है। यदाश्य चित्तमर्थेषु समेषु इंद्रिय वृत्ति भी न विगृह्याति वैषम्यं प्रियम अप्रियम इति उतः। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तो इस अध्याय के नाम क्या है? कर्म बंधन। इस अध्याय में किस प्रकार बद्ध जीव कर्म बंधन में फंसता है और किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाता है, दोनों की चर्चा की गई है। प्रारंभिक श्लोक में इस अध्याय में माता देवव्रती को भगवान कपिलदेव ने बताया कि कैसे जीव कर्म बंधन में फंसता है। कैसे फंसता है? धर्म अर्थ काम, ये तीनों को जो जीवन के लक्ष्य समझता है और वैदिक कर्मकांड और ज्ञान कांड को आश्रय करता है, वो कर्म बंधन में फंस जाता है। जैसे नरोत्तमदास ठाकुर कहे कि ज्ञान कांड सकली विषय भांड अमृत बलिया जेहू खाए नाना जनी सही फिरे कदर जे भक्षण करे तारा जन्म अधपते जाए। कर्मकांड और ज्ञानकांड कैसे हैं? केवल विषय भांड, विष का अर्थ जहर समझते हैं। जहर के कोई पतला में जहर रखा गया है पात्र में, जहर जैसे है, लेकिन कोई सोचता कि नहीं अमृत है, सोचकर उसको पिएगा तो क्या होगा? वो जन्म संसार में भटकते रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अमृत बलिया जेहु खाए नाना जोनी से ही फिरे, फिर वो कई जोनी में भ्रमण करते रहेगा। मनुष्य से फिर कुत्ता सुअर व कई प्रकार की, जैसे अपने कर्म की कोई देवता की ऊर्ध गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छति तामसा, ये तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित होकर कभी कभी देवता बन जाएगा, कभी मनुष्य जनि में, कभी और नीचे जनि में, पशुओं की जनि में, ऐसे ही भटकते, ऐसे ही भटकते रहेगा। नाना जोनि से ही फिरे कदर जी भक्षण करे, तारा जोनि तारा जन्म अधपते जाए। सो इस प्रकार आस्ते 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 गिरते जाता है। तो लेकिन इसी प्रकार जो कर्मकांड और ज्ञानकांड को आश्रय करता, धर्म अर्थ काम को ही केवल जीवन का लक्ष्य समझा है, तो कर्मबंधन में फंसा रहता है। लेकिन इसके आगे उठकर यदि कोई भगवान वासुदेव की भक्ति करना चाहता है, भगवान की वासुदेव की भक्ति करने से कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है, जैसे काल के श्लोक में भी कहा गया था। काल के श्लोक बड़े अच्छे श्लोक था, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यं ज्ञानम यत ब्रह्म दर्शनम। ये श्लोक सेम श्लोक भागवत के प्रारंभ से आता है, तो वहां पर कहा केवल लास्ट वर्ड, लास्ट जो शब्द है वो चेंज है, क्या वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम, लेकिन यहां पर ब्रह्म दर्शनम शब्द केवल फर्क है, नहीं तो श्लोक एक ही है। जो भक्ति योग को आश्रय करके ही भगवान वासुदेव साथ संपर्क को स्थापना करता है, बाबा उनकी भक्ति करता है, तो उसी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने से ही उसकी मन उसके शीघ्रति शीघ्र आंसू, आंसू का अर्थ शीघ्रति शीघ्र क्या उसको प्राप्त हो जाता। जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम यत ब्रह्म दर्शनम। ब्रह्म दर्शन अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जो ज्ञान और वैराग्य की जितनी आवश्यकता है वो अपने आप प्राप्त होता है यदि कोई भगवान वासुदेव की आश्रय लेता है भक्ति योग को, भक्ति योग के माध्यम से शुद्ध भक्ति। वासुदेव अर्थात वासुदेव भगवती अर्थात भगवान वासुदेव की चरण कमल को जो आश्रय करता है भक्ति योग के माध्यम से, तो अपने आप संसार के प्रति वो वैराग्य को प्राप्त कर लेता है और जो आध्यात्मिक ज्ञान उसकी आवश्यकता है वो भी उसे प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से भगवान को दर्शन कर सकता है, भगवत साक्षात्कार कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान के साक्षात्कार करता है तो वो कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उन्नत भक्त जो होता है वो सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जो उत्तम कोटि की भक्त है, उत्तम अधिकारी वैष्णव है, वो सर्वत्र अपने भगवान को दर्शन करता है। प्रहलाद महाराज सर्वत्र भगवान को दर्शन करते थे, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु बोला कि क्या ये खंभे की देख रहे, खंभे के अंदर क्या तरह भगवान है, सर्वत्र है तो खंभे के अंदर क्यों नहीं है, तो खंभे की भी है, खंभे में भी है पिताजी, तो खंभे के अंदर में भगवान प्रकट हुए है। निज भूत्य भाषित अपने भूत्य अपने सेवक भक्त प्रहलाद की बात को प्रमाणित करने के लिए प्रकट हो गए, वहीं से खंभे से भी प्रकट हो गए। भगवान सर्वत्र है, जो उन्नत भक्त होता है सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है। भगवद गीता में कई श्लोक इसकी भी पुष्टि करता है, यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च सचमेन प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है और सभी के हृदय में मुझे दर्शन करता है, उस प्रकार व्यक्ति कभी भी मेरी दृष्टि से अगोचर नहीं होता, वा मैं भी उसकी दृष्टि से अगोचर नहीं रहता हूं। भगवान कहे छठा अध्याय 30 नंबर श्लोक, भगवान कहे तो इसलिए भगवान सर्वत्र है, लेकिन उत्तम भक्त इसको अनुभव कर सकता है। जो उत्तम अधिकारी भक्त है वो सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है, अर्थात जिस ज्ञान को प्राप्त करने से ही सर्वत्र भगवान को दर्शन किया जाता। चौथा अध्याय में भी कहा गया, विद्या विनय संपर्णे ब्राह्मणे गभीहस्तिनी सुनी चैव सुपाखे च पंडितः समदर्शिनः। इसको पंडित कहते, किसको, जो विद्या और विनय से संपन्न होकर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में किसको देखता है, परमात्मा को दर्शन करता है। सुनी चैव सुपाखे च, चाहे कुत्ता हो, चांडाल हो, हाथी हो, मनुष्य हो, सभी के हृदय में वो एक भगवान को, परम ब्रह्म को, परमात्मा को दर्शन करता है। ये वही प्रकृत में ज्ञान के अधिकारी, ज्ञान का अर्थ नहीं कि कुछ भौतिक ज्ञान प्राप्त, लेकिन ज्ञानी जो होता है तो सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है। प्रकृत में जो आध्यात्म ज्ञान में युक्त है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान को दर्शन करने के कारण, जैसे आज के श्लोक में कहा गया कि फिर वो दैत्य से, दैत्य भाव से मुक्त रहता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है, तो इसके जीवन का लक्ष्य है केवल भगवान को तृप्त करना। शुद्ध भक्त के क्या लक्ष्य रहता है? भगवान को प्रसन्न करना। जैसे प्रभुपाद ने कहा करते थे, बाबा उनकी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा करते थे कि भगवान को देखने के लिए प्रयास मत करो, किसके लिए प्रयास करो? ऐसे ही सेवा करो जैसे भगवान आपको देखेंगे। एक बार जगन्नाथ मंदिर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ में गए थे दर्शन करने। जगन्नाथ मंदिर में गए, सब भागे दौड़ के, मैंने दौड़ते दौड़ते भागे एकदम कहां दर्शन करने के लिए, पूरे भगवान के समक्ष में एकदम अंदर में चले गए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खड़े थे कहां, गरुड़ खंभे के पीछे से देख रहे हैं, वहीं से महाप्रभु जहां से दर्शन करते थे वहीं दर्शन किए। सभी लोग आए, आके जो रिटर्न आ रहे थे उन्होंने पूछा कि आप लोग भगवान को देखे, जगन्नाथ जी को दर्शन किए? सब लोग बोले हैं यस यस, सभी हाथ उड़े, सब लोग, हम बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत सुंदर, एकदम सन्निकट में बहुत कितने सुंदर अच्छा दर्शन हुआ हमारा। लेकिन भक्ति भक्ति सरस्वती ठाकुर ने इसमें इसी आंसर में खुशी नहीं थे, उन्होंने कहे कि नहीं तुम्हें कोई भी भगवान को देखा नहीं है, आप कहां से भगवान को देख सकते हो? न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, प्रकृति में भगवान हमको देखे, हम कहां से बद्ध जी भगवान को देखने में हमारे पास कौन सा योग्यता है? हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसके माध्यम से भगवान हमको देखे, हम उनके शुद्ध भक्तों के शरण में रहे। गरुड़ जी महान शुद्ध भक्त हैं, भगवान उन्हीं को देखते हैं। जगन्नाथ जी किसको देखते हैं? गरुड़ जी को, कि गरुड़ जी सामने बैठे, इसलिए हमें गरुड़ जी के शरण में रहकर उनके पीछे से देखना चाहिए। गरुड़ जी की कृपा से जो भगवान गरुड़ को देखेंगे तो हमारे ऊपर भी नजर डालेंगे। आप ऐसे सामने चल जाए ना, आपको भगवान नहीं देखने वाले, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को देखते हैं, उनकी नजर उनके शुद्ध भक्त के ऊपर रहता है। जिस प्रकार शुद्ध भक्त की नजर भी कहां रहता है? भगवान की, सर्वत्र भगवान को ही दर्शन करते हैं कहीं भी। तो इसलिए उन्होंने उसमें कमेंट दिया कि प्रकृति में यदि आप ऐसे ही कुछ काम करो जैसे भगवान आपको देखेंगे, भगवान को देखने के लिए ज्यादा प्रयास मत करो। ये शुद्ध भक्तों की विवेचना, जो उत्तम वैष्णव है सर्वत्र भगवान को दर्शन करते, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र उनको भगवान का इष्ट देव स्मृति। सब 24 घंटे 24 आवर्स इन कृष्ण सर्विस लगे रहते हैं, कौन? उत्तम भक्त। इसलिए कहते कि जो जिसके चित्त संपूर्ण रूप में विषय से हट चुका है, बात जिसकी इंद्रियां संपूर्ण संयमित हो चुके हैं, उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्ति में जो समदर्शी हो चुका है, और फिर वो कहीं भेद नहीं देखता है, प्रिय और अप्रिय से परे हो जाता है, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, दैते भद्रा भद्र ज्ञान सवो मनोधर्म एई भाल एई मंद एई सब भ्रम। ये सब केवल भ्रम है, ये भालो है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये दैत्य भाव ये प्रकृति में केवल मन का धर्म है, मन ही हमको बताता कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब किसका काम है हमको ये बताना कि ये अच्छा है बुरा है, ये तुम्हारा मित्र है तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा, ये सारे मन ही हमको पाठ पढ़ा रहा है। इसलिए प्रकृति में ये भालो ये मंद ये सब भ्रम ये सब मनोधर्म, ये प्रकृति में इस प्रकार जो ज्ञान जो दैत्य ज्ञान हमको देता है कि अच्छा है ये बुरा है शत्रु है मित्र है, ये सब प्रकार ज्ञान जो उत्पन्न होता है तथा कथित भौतिक ज्ञान, ये सब मन का धर्म है, इसलिए भ्रम है, केवल हमें भ्रमित करता है। प्रकृति में प्रभुपाद तात्पर्य लगता है कि प्रकृति में आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है और भौतिक जगत में सब कुछ बुरा है। तात्पर्य में प्रभुपाद लगते हैं कि प्रकृति आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है, कृष्ण के संबंधित कोई भी वस्तु अच्छा होता है, सब कुछ मधुरम अधरम मधुरम मधुराष्टक, लेकिन जो भगवान के सब कुछ मधुर है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के जो कुछ वस्तु है सब कुछ अच्छा है, और इस भौतिक जगत में सब कुछ बुरा है, है? भौतिक जगत में जो कुछ भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा दृष्टि से बाहर जो प्रभावित होकर जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करने के लिए जब हम इसको सोचते हैं तो वही सब बुरा होता है, वहीं से सब गंध की शुरुआत हो जाता है। प्रकृति में सब कुछ किसके भोग के लिए है? भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, भगवान की भोग के लिए है, भगवान सबकी भरता है भोगता है, लेकिन आम जब इसको भोगना चाहते हैं वहीं से सब बुराई शुरू हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जगत प्रकृति में भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बुराई है, क्योंकि ये भौतिक जगत ही है, ये भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा नियंत्रित है, यहां पर कोई कोई कहेगा कि नहीं नहीं ड्राई स्टूल जो है और लिक्विड स्टूल से अच्छा है। ये प्रभुपाद ने कहा कि दोनों ही बेकार की चीज है, क्या चाहे ड्राई स्टूल हो या जो गंदगी, जो ड्राई सूखे सूखा हो या गीले हो, वो गंदगी ही है। इस संसार में कोई भी चीज अच्छा नहीं है, लेकिन यदि हम उसी वस्तु को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, भगवान के संबंधित ले जाते हैं, फिर सब कुछ अच्छा बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रत्येक वस्तु को भगवान के साथ हम जब संबंधित कर देते हैं, फिर वो सब कुछ अच्छा हो जाता है, वो फिर आध्यात्मिक बन जाता है। हमारे पास में इंद्रिया है, लेकिन इंद्रियों को हम हमारे शरीर की सेवा में लगाते हैं, इनको तृप्त करने, इंद्रिय तृप्ति में जब इनको लगाते हैं तो फिर वही बुरा होता है। लेकिन वही इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। मायावादी सब कहते हैं सब मिथ्या है, जगत में सब कुछ मिथ्या है, जगत मिथ्या, कोई भी वस्तु संसार में सब मिथ्या है, सब झूठा है, ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ झूठा है। इसलिए उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता संसार में, सब कुछ झूठे कहते हैं। तो लेकिन वैष्णव दर्शन में हम सबको झूठे नहीं कहते पूरे, लेकिन ये सब भगवान का ही शक्ति का ही प्रकाश है। इसलिए भगवान के साथ संबंधित होने के नाते इनको सब फिर जब भगवान के साथ में सेवा में जोड़ा जाता है तो फिर वो भी सब अच्छे बन सकते हैं। कोई भी वस्तु को हम जब भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने की कला सीखना चाहिए। हर वस्तु को लगाया जा सकता है भगवान की सेवा में। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध अभक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, ये सब तीनों शत्रु मेन कहते हैं, काम क्रोध और लोभ तीन भाई है। ये मेन हमको आध्यात्मिक दिग में आध्यात्मिक प्रगति करने में बाधा डालते हैं, लेकिन इनको यदि हम भगवान की सेवा में लगाते हैं ये फिर मित्र बन सकते हैं। काम और क्रोध किस लिए उत्पन्न होता है, किस लिए उत्पन्न होता काम क्रोध है? राजगुण समद्भव, काम ऐसा क्रोध ऐसा राजगुण समद्भव महासन महापाप्म विद्धेन यह वैरिणाम, यही प्रकृति में शत्रु है। इनको पहचानो, तृतीय अध्याय तीसरे अध्याय गीता के अंतिम श्लोक में भगवान कहते कि यही शत्रु महाबाहो, इसको पहचानो, यही तुम्हारा शत्रु है। तुम सोचते कि और कोई तुम्हारा शत्रु है, और कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम्हारा शत्रु यही है काम रूप सुदुष्कर्म, यही शत्रु महाबाहो काम रूप सुदुष्कर्म, इसी को जय कर लो। ये जय कर लेगा तो फिर तुम तुम्हारे और कोई शत्रु दिखाई नहीं देंगे, सभी तुम्हारा मित्र दिखाई पड़ेंगे। तो ये लस्टी डिजायर बा काम, जो इंद्रिय भोगने का जो इच्छा, इंद्रियों को भोग करने का जो इच्छा, यही शत्रुता है। लेकिन इनको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। काम रजगुण से उत्पन्न होने के कारण फिजिकल लेबर कृष्ण कर्मार्पणे, काम कृष्ण कर्मार्पणे, रजगुणी व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना चाहिए फिजिकली लेबर। इसको इतना ही परिश्रम करना चाहिए कि इसको कोई टाइम ना हो कुछ दूसरे बात चिंतन करने के लिए। पाश्चात्य जगत में लोग साधारण तो रजगुण की प्रवृत्ति होने के कारण प्रभुपाद ने क्या सेवा दिया इनको, पकड़ो बुक बैग, मेरा किताब लो और वितरण करो, जाओ घूमो दिन भर किताब लेके घूमते रहो, और फिर उनके जो फर्स्ट प्राइज जो अनाउंस जो पहला नंबर में आएगा उसको बहुत प्रभुपाद ने उसको बहुत अच्छा बोलते थे और उसको सामने लेते थे, खड़ा करते, बहुत अच्छा भक्त है, कितना सेवा किया, उसको कुछ पुरस्कार भी दिया जाता था। तो इसलिए कंपटीशन शुरू हो जाता है, कंपटीशन हो जाए पर दिन रात दौड़ते रहेंगे एयरपोर्ट में इधर से उधर, तो कैसे फास्ट कैसे भी प्रभुपाद जी ने अच्छा कैसे बोलेंगे हमको, भागते रहेंगे। परिश्रम, कठोर परिश्रम, इतना करो कि आकर फिर प्रसाद खा लो और फिर सो जाओ। ये माइंड को समय नहीं देना, कुछ चिंतन करने के लिए समय भी नहीं देना, पूरे फुल टाइम एंगेजमेंट है। इसलिए रजोगुण व्यक्ति के लिए है जो जिससे काम और क्रोध जन्म होते हैं, कहते हैं कि कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध हो रहा है तो क्रोधित हो रहा है व्यक्ति, लेकिन डिवोशनल सर्विस भगवान के लिए सेवा करते करते जो अभक्त द्वेषी आते हैं, कोई मंदिर तोड़ने के लिए आएगा है? कोई भगवान की सेवा के भक्तों की निंदा कर रहा है, गुरु की निंदा कर रहा है, मंदिर तोड़ने आ रहा है, भगवान को निंदा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्रोध को उपयोग करना चाहिए। हनुमान जी जैसे क्रोध को उपयोग किए लंका को जलाने में, क्योंकि रावण राम की द्रोही था, इसलिए लंका को जलाने वो क्रोध को वही तो अपने क्रोध को उपयोग किया। इसलिए लोग हनुमान जी की कोई निंदा नहीं करते, उनको महान भक्त प्रभुपाद जी कहते हैं हनुमान जी कोई निंदा नहीं करता है, उनके सभी प्रशंसा करते हैं। उनके लंका को कैसे जलाए उसको उसको पढ़कर रामायण में बड़े भक्त लोग बड़े आनंद लेते हैं, हैं? तो इसलिए जब भक्त इसी सभी वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगा सकते, काम कृष्ण कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध अभक्त दोषी जने, और लोभ साधु संगे हरि कथा। साधु संग में बैठकर हरि कथा ये सुनने के लिए रुचि होना चाहिए, हैं? इसी से ही रुचि श्रवण, श्रवण ही पहला अंग है, और कथा श्रवण करना, साधु को देखने का अर्थ है श्रवण करना। साधु को आप देखना देखना चाहते हैं, भक्तिवान सोच ठाकुर कहते थे कि भौतिक जगत में सब कुछ ही आंख में देखते हो, लेकिन साधु को किससे देखना चाहिए? कान से, सुनो साधु से, हैं? श्रवणम सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। सत्संग में बैठकर साधु संग में बैठकर नवावीर जैसे भगवान की कथाओं को श्रवण करने से ये जो रसायन, भगवत कथा को कैसे कहा गया ना, रसायन है, ये समस्त प्रकार के भव व्याधि को ठीक करने वाले हैं, समस्त प्रकार रोग व्याधि, आध्यात्मिक मार्ग में जो सो बाधा डालने वाले जो रोग व्याधि उनको नष्ट करने वाले हैं। रसायन ये रसायन कर्ण गोहर में प्रवेश करके हृदय में पहुंचता है, और हृदय में जितनी प्रकार के अभद्र सबको नष्ट करता है। अपवर्ग जो प वर्ग से उत्पन्न हुआ, जो कि प फ ब भ, प वर्ग से जो साधारण इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं से भरा हुआ है, परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना इंद्रिय तृप्ति के लिए, कब तक परिश्रम करना, मुख से फेन निकालने तक परिश्रम करना, प फ ब इतने परिश्रम करके सारे बेकार जाता है, क्योंकि सोचा था कि सुखी रहेगा धन और स्त्री के लेकर, सुखी नहीं रह पाता, सब बेकार जाता है, उसको परिश्रम बेकार गया। फिर भयभीत समय हमेशा रहता है अपने संपत्तियों को, फिर सुरक्षा करना, इंद्रिय तृप्ति के साधन जो कुछ प्राप्त किया इसको कैसे कोई दूसरा लूट न ले, हमेशा भयभीत रहता है जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। अंत में क्या होता, मृत्यु, अंत में मृत्यु सर्वहर शाह। इस प्रकार पवर्ग से मुक्त करता यदि हरि कथा को कोई ठीक से सत्संग में बैठकर श्रवण करेगा, भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा तद जो सुनाद आंसू, आंसू का अर्थ शीघ्र तिशीर्घ, आज के श्लोक में भी यह शब्द आता है आंसू, आंसू शब्द यहां भी आता है। न विगृहति वैषम्यं प्रियम यदास्य चित्तम अर्थेषु समेषु इंद्रिय वृत्ति भी न विगृहति वैषम्यं प्रियम अप्रियम इति, आज के काल के श्लोक में था आंसू, काल के श्लोक में आंसू शब्द था। आंसु वैराग्यम जनयति आंसु वैराग्यम ज्ञानम च यत ब्रह्म दर्शनम। तो आंसु बहुत जल्दी से जल्दी भगवत कथाओं को श्रवण करने से जल्दी ये अभद्र सब नष्ट हो जाते हैं, जितने सब पवर्ग से उत्पन्न हुए अभद्र। आंसु जनयति आंसु वैराग्यम ज्ञानम ने ज्ञानम या ब्रह्म दर्शनम। वहां पर कहते कि भगवान कपिलदेव वहां पर कहते कि हृदय अंतस्थी अवध सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविद भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जो सुनाद आंसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। तीनों प्राप्त होते क्या क्या, श्रद्धा रति फिर भक्ति। श्रद्धा का अर्थ पूर्ण विश्वास होता है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है, कृष्ण का भक्ति करना ही मनुष्य का जीवन का एकमात्र धर्म है व लक्ष्य है, इसमें पूर्ण विश्वास होना उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा फिर रति आसक्ति, भगवान के चरण कमल के प्रति आसक्ति हो जाना, अंत में भक्ति। भक्ति का अर्थ शब्द का अर्थ यहां पर प्रेम भक्ति, भगवान के चरण कमल में प्रेम प्राप्त कर लेना, ये प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब इस प्रकार उन्नत आस्ते आस्ते सत्संग में कथाओं को श्रवण करके ही और उनको जीवन में उतारने के लिए प्रयास करते हुए व्यक्ति जब उत्तम भक्ति के कोटि में आ जाता है, फिर उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है। फिर वो ये अच्छा ये बुरा ये शत्रु मित्र ये सब नहीं देखता है। समः शत्रुः च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जितः। भगवान ने जैसे कहते भक्ति योग में, ये श्लोक इस बारे में कहते, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जेन के नचित अनिकेत स्थिरमती भक्तिमान में प्रिय न रह। बा दूसरे श्लोक में जैसे कहते कि जोगी कैसे कैसा होता है ना, समलोष्ट्रस मकांचन, मिट्टी में तथा सोना ये दोनों को समान देखता है, इसमें कोई भेद नहीं देखता, सबकी सभी में किसी को शत्रु मित्र भी देख नहीं पाता है। उत्तम वैष्णव के सामने कोई चोर है, कोई चोर है डकैत है और कोई साधु है, वो दोनों को भी समान देखता है, सबको सबको जानता है कि सभी कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। वो क्या सोचता है, सभी कृष्ण की इच्छा से हो रहा है संसार में जो कुछ हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, भगवान की इच्छा से चल रहा है। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, विष्णु करे न पालन, शिव करे न संघार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, सब कुछ इनकी इच्छा से होता है। तो इसलिए उत्तम अधिकारी जब वैष्णव किसी भेद नहीं देख पाता, इसलिए प्रचार करना बड़ा कठिन होता है उसके लिए। किसके लिए, उत्तम वैष्णव के लिए, किसको प्रचार करेगा, वो सोचते कि सारे लोग संसार में भक्ति में लगे हुए हैं और मैं अकेला ही अकर्मा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। यदि वो भगवान की उत्तम कोटि की भक्त होता, सब भगवान की सेवा में लगा रहता है, इंद्रियों को संपूर्ण संयमित करके रखा है, सारा जगत के हित के चिंतन में रहता है, लेकिन फिर भी वो सोचता कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ही अकेला ही अधम हूं और सभी लोग भगवत इच्छा से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इसे उत्तम कोटि के जो भक्त है सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है। यमंग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्यांग न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, भगवान कहते हैं सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है और भगवान में ही सबको दर्शन करता है। और सोचते हैं कि सभी भगवान की इच्छा से, ये चोर भी चोरी कर रहा है और वो साधु भी अपने भजन कर रहे, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, अपने अपने प्रारब्ध से अपने ठीक पद पर रहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति किसी को घृणा नहीं करता है, चाहे पाप को घृणा करता है लेकिन पापी को नहीं है। तो इसी प्रकार स्थिति में जब आ जाता है व्यक्ति, इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है, चित्तम अर्थेषु समेषु इंद्रिय वृत्ति भी, तो फिर न विगृहति वैषम्यं, फिर उसमें अंतर नहीं देखता है, किसमें प्रियम अप्रियम, प्रिय और अप्रिय में अंतर नहीं देखता है, सभी प्रिय है, उसके लिए कोई अप्रिय नहीं होते हैं। बाबा प्रभुपाद ने कहा कि प्रकृति में सब कुछ बुरा, केवल ये भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में कुछ बुरा नहीं होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए कोई व्यक्ति इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी यदि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गया है, तो फिर उसको तो कैवल्य नरक आ जाते, कैवल्य में इसको तथा कथित साजुज्य मुक्ति इसको नरक से ही घृणित प्रतीत होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनके संकीर्तन आंदोलन में जो कुछ भी जुड़ गया है, जो जोड़ जाता है अपने को, फिर सब कुछ आनंदम बुद्धिवर्धनम, फिर सब उसके आनंद की वृद्धि होता है, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है। कोई भी वस्तु का भगवान की सेवा में लगाने से फिर वो अच्छे बन जाता है, कोई संसार में कोई बुरा नहीं है। इसलिए भक्त हमेशा प्रत्येक वस्तु को कैसे देखना चाहिए, कैसा दृष्टि होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु में अच्छा ही क्या है देखना चाहिए, इसको कैसे भगवान की सेवा में जोड़ना है उसकी चिंतन करना चाहिए। इसलिए बुद्ध जी को देखने से भी उनको कैसे भक्ति में जोड़ना वही दृष्टि होना चाहिए, उसे उसके वो बुराई क्या है देखना नहीं, मक्खी मक्खी की तरफ नहीं, मक्खी क्या करता है बैठता है कहां गंदगी ढूंढते रहता है, कहां गंदगी वही बैठेगा। और मधुमक्खी हमेशा क्या ढूंढता मधु कहां है, तो इसलिए हम ऐसे मक्खी की तरफ गंदगी में हमेशा बैठने का जरूरत नहीं है। यदि हम भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत में रहकर भी हम भगवान की सेवा में कैसे अपने को जोड़े रखेंगे उसी की प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत में रहते हुए प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हर वस्तु, कोई भी व्यक्ति को आप देखें, यदि उसके पास में 99% भी बुरा गुण होता है तो एक गुण कुछ अच्छा रहता है। एक बार गोड़िया मठ में एक भक्त रहता था, कुछ मैंने किसको सुनता नहीं, तो अथॉरिटी नहीं सुनता, कुछ बदमाशी मैंने थोड़ा कथा मानता नहीं, तो अथॉरिटी, तो उसको निकालना चाहते थे मंदिर से, आगे कंप्लेन दिए भक्त भक्ति सिंह ठाकुर पाप की, ये जो भक्त है बहुत बदमाश है, किसी की बात नहीं सुनता, अथॉरिटी नहीं सुनता है, कुछ नहीं, अपना बस है माला लेके हरे कृष्ण करते रहेगा, कोई भी सेवा करो कुछ नहीं, चुपचाप आएगा प्रसाद में बैठेगा और खाएगा, फिर कोई गाली देने से भी कुछ नहीं बोलता नहीं किसको, कितने भी गाली दो कितने भी कुछ बोलो थक गए हम लोग इसके साथ, नहीं कोई काम नहीं करेगा, खाने का टाइम आकर बैठ जाएगा प्रसाद खाएगा और फिर माला लेके हरे कृष्ण करेगा, बस हरे कृष्ण करता है, क्या करेंगे इसको, मंदिर से बाहर आउट करते, कोई सेवा किसी की मानता नहीं है। तो भक्ति ठाकुर सुनते गए कितना क्या क्या इसके गुण सब दुर्गुण सब भक्त एकदम 10-15 लोग सभी एक एक दुर्गुण कहते रहे, इसका ये दुर्गुण ये दुर्गुण ये दुर्गुण सब कहते रहे, तो कहिए अच्छा इसका और कोई भी सदगुण नहीं है, कोई कुछ एक कोई सदगुण है इसके पास, तो बोला हाँ, एक बोला कि हाँ प्रभुपाद वो अच्छा मृदंग बजाता है अच्छा मृदंग बजाता है, कीर्तन जब होता है मृदंग पकड़ लेता है, मृदंग अच्छा बजाता है और नाम अच्छा जप करता है, बोला ये क्यों नहीं बोलते हो तुम हैं, ये क्यों नहीं बोलते कि अच्छा उसको अच्छा जप करने जप में रुचि है और मृदंग बजाने में रुचि है, मृदंग अच्छा बजाता है कीर्तन अच्छा करता है जप अच्छा करता है, मेरा संस्कार किसके लिए है, तो कहे कि सब भक्त में अच्छा क्या देखने चेष्टा करो, बुराई को नहीं, हमेशा बुराई क्या है बुराई क्या है बुराई क्या देखते देखते फिर हम वैष्णव निंदा करते रहेंगे, पहला अपराध जो जीवन को समर्पित किया है कृष्ण भक्ति में हरिनाम के प्रचार में हाँ उसकी निंदा करना, तो इसलिए हमेशा हम भक्तों को देखते हैं तो इसी दृष्टि से देखेंगे उसके पास में क्या अच्छा गुण है, है? और इसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाता, प्रभुपाद ने यही दृष्टि में रहते थे पश्चिम जगत में, कोई भी इतने घृणित जो कि चार नियम तोड़ने वाले भक्त होते थे सारे तोड़ते थे लोग पश्चिम जगत में, प्रभुपाद जो मिले इनको, लेकिन इनको मिलकर भी इनके पास में अच्छा गुण क्या प्रभुपाद देख लेते और इसको सेवा में लगा देते, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा में एंगेज करने में प्रभुपाद बड़े एक्सपर्ट थे और बस वो सेवा में लग जाता था, फिर आस्ते 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 इसकी मति भक्ति में लग जाता था, इसलिए समदर्शी होना चाहिए सब, सभी प्रत्येक भक्त को देखते ही हम इनसे अच्छा देखें और इसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएं उसके लिए प्रयास करें हैं, इसी बात प्रभुपाद तात्पर्य में लगते कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है और इस भौतिक जगत में सब कुछ बुरा है, वास्तव में इस संसार में कुछ अच्छा नहीं है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है, आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता क्योंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखता है, अतः वह समदर्शी होता है, इसलिए भक्त को समदर्शी कहा जाता है, क्योंकि वो जो कुछ देखता है इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएगा उसी के चिंतन में रहता है, कैसे भगवान की सेवा में इसको लगा जा सकता है, हर वस्तु को भगवत सेवा में कैसे लगाना, एक सेवा नहीं लगता है, काम क्रोध लोभो मोहो मद मास्टर ये सब में, लेकिन आचार्य लोग ने कहा कि एक चीज नहीं लगता है भगवान की सेवा में, कौन सा है, मात्सर्य ईर्षा, इसको लगाना बड़ा कठिन है, ये कैसे लगेगा आध्यात्मिक जगत में, तो ये कैसे रहता है उसके ठीक विकृत रूप होता है जैसे कोई चंद्रा ने कोई चंद्रावली एक माला बनाकर अच्छे से भगवान के गले में पहना दिए तो उसको राधारानी के ग्रुप में कोई देख लिया सकी, कौन ललिता देख ली तो फिर वो आएगी उससे बेस्ट बहुत सुंदर इससे भी और बेटर कई गुण के अच्छे से माला बनाकर फिर वो जाएगी कृष्ण की माला से पहले का जो माला था उसको हटा के फिर ये माला डाल देगी है, तो ये मेरे प्रकृति में ईर्षा नहीं होता है बात से, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में प्रेम है लेकिन उसके ठीक विकट रूप इस भौतिक जगत में ईर्षा में परिणत हो जाता है, तो ईर्षा को केवल कहते आचार्य ने इसको भगवान की सेवा में लगाना बड़ा कठिन होता है, नहीं तो और सब भगवान की सेवा में लग जाते हैं, इसलिए ईर्षा ईर्षा केवल हम भी इसको हटा सकते हैं हमारे दृष्टि को हटाएंगे, दृष्टि यदि हमारे देखेंगे कोई भी सब प्रत्येक को केवल कृष्ण के दास रूप में देखेंगे, प्रकृति में सभी जीव का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो इसलिए प्रत्येक जीव को यदि कृष्ण के दास के रूप में हम देखेंगे हमारे दृष्टि को बदल लेंगे, हमारे दृष्टि का चिंतन को बदलाएंगे, केहू माने केहू ना माने सभी तार दास, जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश, जो हमारा दृष्टि को हम ऐसे बदलाएंगे सभी को कृष्ण के दास रूप में देखेंगे और इनके कृष्ण भक्ति में जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, कितने बड़े बुरे व्यक्ति भी हो लेकिन इसके पास में अच्छे गुण को ढूंढेंगे और हम कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए उसके लिए प्रयास करेंगे, तो फिर हम भी आस्ते 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 उन्नत भक्ति के स्तर पर आ सकते हैं, जब ये किसी दूसरे से बुराई ना देखें हमेशा सबसे अच्छा ही देखें, इसी भावना को जो अपनाएंगे तभी हम आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमेशा यदि किसी व्यक्ति से बुराई किया देखते रहेंगे और उसी की निंदा करते रहेंगे, हैं, शिशुपाल की तरफ, हैं, कितना बुराई है भगवान के, क्या क्या बुराई है, बोलते रहा बोलते रहा बोलते रहा बोलते रहा, भगवान सुनते रहे सब। तो भीम तो गदा उठा लिया था, लेकिन वो कहे नहीं, रुको अभी, रुक जाओ रुक जाओ, उसकी मां को मैं वचन दिया हूं, कितने निंदा सहन करूंगा, 100 है। तो बोले नहीं, तो यज्ञशाला में ये खून चले, खून बहेगा, इधर शांत हो। तो ऐसे ही शिशुपाल के प्रति नहीं हमको बुराई देखते रहना, क्या है वो, तो भगवान की और भगवत भक्त में भी है। जो राक्षस प्रकृति लोग होते हैं वो उनके सब समय भगवान में और भगवत भक्त में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं फिर उनकी नजर ऐसा नहीं होता, हमेशा प्रत्येक वस्तु में अच्छे को देखते। कोई राक्षस भी होता है फिर उनको भी अच्छे उपदेश दिया जाता है। प्रहलाद महाराज ने हमेशा अच्छा उपदेश दिया, दे रहे थे किसको, हिरण्यकश्यप को, चाहे उच्च उसे अच्छा नहीं लगा है, लेकिन वो जो दे रहे थे अच्छा उपदेश है, उनके सहपाठियों को दिए, बाप उनको दिए, सब वो हमारे लिए उपयुक्त है। सुख और दुख ये तो सारे इंद्रिय वृत्ति से, प्रहलाद महाराज कहे कि सुखं इंद्रियकं दैत्या देह जोगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् जथा दुख जत्नतः। जैसे कोई दुख नहीं चाहता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, पूर्व प्रारब्ध के आधार पर दुख आएगा, उसको रोका नहीं जा सकता, प्रारब्ध को कोई रोकना आसान नहीं है। और इसी प्रकार तुमको जितने पूर्व प्रारब्ध के आधार पर, कर्म के आधार पर जितने सुख भोगने का इतने सुख मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कई जगह पर श्लोक कोट करते हैं, कहते हैं आपको इसमें चिंता नहीं करने का, दुख और सुख ही आते जाएगा, आएगा रहेगा, पूर्व प्रारब्ध के आधार पर जाएगा आएगा, भक्त का काम नहीं इसकी इसकी बारे में मन को विचलित करना, उसकी काम है भगवान की भक्ति में लगा रहना। देह जोगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात, ये अपने आप प्राप्त होते पूर्व प्रारब्ध के आधार पर। इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए, इससे सुख दुख आते रहते। इसलिए भगवत के प्रारंभ से ही कहते कि आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है मात्रा स्पर्शस्तु कौंते शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइना नित्यम तुम तिथिक्य भारत, इसको सहन करो। इंद्रिय के संयोग से ये जो सुख दुख आता है, ठंडी गर्मी शीत उष्ण सुख दुखदा, सुख दुख आते जाता है, इसको सहन करो, ये आते जाते रहेंगे, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो असली काम हो क्या है, भगवान की भक्ति करना, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति योग कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। श्रवण कीर्तन नहीं कहते, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि भक्ति योग किसको कहते हैं, यही हमारा धन है, संपत्ति है, भक्तों की संपत्ति भक्ति योग ही है। लेकिन भक्ति योग किसको कहते, वो कहते भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, यही धन, तीन बार कहते यही हमारा धन है। लेकिन भक्ति योग होता क्या है, भक्ति योग कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, सुनना रोना, भगवान की कथाओं को श्रवण करने से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण करके आंख से अश्रु आना चाहिए, तभी भक्ति योग हो रहा, भक्ति योग वो भक्ति योग की प्रारंभ कर रहा है, ये पता लगता है कि भक्ति योग को मार्ग में चल रहा है। नयनात गलद अश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितंग बपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। उस स्तर पर आने से फिर हम भक्ति योग को इसी प्रकार श्रवण करेंगे, और उस दिन कब आएगा, जब हमारे आंख से अश्रु की धारा बहेगा भगवान की कथाओं को श्रवण करने से ही। हे गोविंद, हे कृष्ण, ये नाम उच्चारण करते ही शरीर रोमांचित हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा, वाणी गदगद हो जाएगा, आंख से अश्रु बहेगा, ये भक्ति योग की लक्षण है। तभी इसी भक्ति को हम प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है। तो इस स्तर को जब प्राप्त करेंगे, जब ही हम ये दस नाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे, ये कभी प्राप्त होगा है, जब दस नाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे, वैष्णव निंदा से बचेंगे, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उखाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पता, इससे मुक्त होने के लिए सबसे प्रयास करें। ये पागल हाथी से हमको आक्रमण न करें, दस नाम अपराध से बचे हैं, अपराध शून्य या लह कृष्ण नाम, अपराध से मुक्त होकर कृष्ण नाम लेने से ही फिर भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, यही जीवन का लक्ष्य है। और हम अभी श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशन अनुजाई प्रारंभ करते हैं, इसे आस्ते 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 यदि प्रभुपाद जी के दिया गया जो मार्ग है उसको फॉलो करते रहेंगे, और सब समय सभी को अच्छे दृष्टि से देखेंगे, प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे उस प्रत्येक वस्तु को, तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो समय हो गया आपके, और आज जैसे मैं बता रहा था कि हमारा तो लिखा नहीं है, मैंने अनाउंस नहीं किया गया, आज मंगल आरती में भी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आज लोचनदास ठाकुर के आविर्भाव तिथि है। लोचनदास ठाकुर किसके किसके प्रसिद्ध है, कितने लोगों को पता है लोचनदास ठाकुर किस लिए प्रसिद्ध है, किसी पता नहीं करता, हाथ उठाओ कितने लोगों को पता है लोचनदास कौन है, लोचनदास ठाकुर कौन है, बस किसी को पता नहीं है। तो हर साल लोचनदास ठाकुर के तिरुभाव आविर्भाव आता है, उसमें तो क्लास होता है ना, तो क्लास सुनते हो आप लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को हैं, गौड़ कथा को यदि सुनना चाहते तो तीन ऑथेंटिक किताब दिए गए हमारे परंपरा में, क्या क्या, प्रामाणिक पुस्तक चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी और चैतन्य मंगल कौन लिखा, लोचन दास ठाकुर। आज मैं क्लास के प्रारंभ से इसलिए आज इनके आविर्भाव ने कारण वो भजन गाया, परम करुणा पहु दुई जन निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर भजन गाते, प्रभुपाद जी बड़ा प्रिय भजन है, है? है? तो ये लोचनदास ठाकुर की आविर्भाव लगभग 1445 शकाब्द अर्थात ख्रिस्टाब्द कितने होगा 1500, इसमें 78 ऐड करने का 1445 में, तो लगभग 1500 कितने 45 में 78 का ऐड करने कितना आ रहा है 1513 लगभग है। और ख्रिस्टाब्द जो देखोगे और इनके तिरुभाव लगभग तिरुभाव हुआ था इसी प्रकार 1613 या 1613 से ही। तो इस प्रकार ये एक वैद्य कुल में जन्म लिए थे वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के काटवा, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में काटवा जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिए थे गंगा के किनारे, काटवा के पास में एक गांव है को ग्राम, उसी गांव में इनकी आविर्भाव हुआ था वैद्य कुल में। बचपन से ही संसार के प्रति विरक्त थे और गौरव इनके जो सदगुरु थे नरहरि सरकार शिखंडवासी, शिखंडवासी थे नरहरि सरकार, उनकी ये प्रिय शिष्य थे। नरहरि आदि करी चामर डुलाए, नरहरि ठाकुर नरहरि सरकार ठाकुर बड़े प्रिय भक्त थे महाप्रभु के उनके अंतरंग पार्षद में। तो उनकी इन्होंने जब थोड़े बचपन में उन्होंने अपने माताजी के घर, माताजी के जो पिताजी है ग्रैंडफादर, माताजी की तरफ से जो इनके ग्रैंडफादर है माताजी के पिताजी, इनके नाना के घर में वहां रहकर आप बाल्य जीवन वहीं बिताए, पढ़ाई लिखाई बहुत संभ्रंत धनाढ्य परिवार से थे। और उन्होंने बाद में जौवन अवस्था में चले गए गुरु जी आश्रम में रहकर वहां गौरांग महाप्रभु के भक्ति में आगे कैसे गुरु के तत्वावधान में रहकर पढ़ाई लिखाई और आधे आध्यात्मिक पढ़ाई लिखाई करने लगे। उनके उनसे चैतन्य कथा को सुनते थे, वहीं पर कीर्तन भी सीखे और गुरु के आदेश से उनके नरहरि सरकार के आदेश से ही उन्होंने ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ, चैतन्य मंगल। न कहे कि मेरे गुरु जी ने मुझे कुछ आदेश दिया, ये चैतन्य मंगल नहीं, जो चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को कुछ लिखने के लिए उन्होंने प्रत्येक दिन चैतन्य कथा उनसे सुनते थे अपने गुरु जी से। और विशेष रूप में उनको आग्रह हुआ, वो कहते कि मैं चैतन्य महाप्रभु लीला लिखने के लिए आग्रह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जब मुरारी गुप्त के द्वारा लिखा गया वो ग्रंथ चैतन्य चरितामृत महाकाव्य जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, वो संस्कृत में लिखे मुरारी गुप्त, चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीला नवदीप लीला सब कुछ उसी में से कोई भी लिखने वाला है सभी उसी को ही अवलंबन करके लिखते हैं। किसको, मुरारी गुप्त के कड़चा, जिसको कहते मुरारी गुप्ता के द्वारा लिखा गया चैतन्य चरितामृत महाकाव्य मिलता है अभी भी संस्कृत में। और इसलिए उसी को आश्रय करके भी उन्होंने चैतन्य भागवत में लिखे हैं वृंदावन दास ठाकुर और लोचनदास ठाकुर भी जो लीलाओं को विशेष रूप में मुख्य, उन्होंने मुरारी गुप्ता के जो किताब को उन्होंने दामोदर पंडित की मुख से सुना, दामोदर पंडित जो चैतन्य महाभागवत वैष्णव थे पार्षद थे उनसे सुने और उनसे नियमित श्रवण करके उनकी रुचि उत्पन्न हुआ चैतन्य कथा में, और गुरु जी से भी आदेश मिला लिखने के लिए कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ को लिखा जाता है किसी अधिकारियों की आदेश लेकर, सदगुरु से आदेश, वैष्णव के आदेश लेकर, और सभी की तृप्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, स्वयं को पर्सनल एम्बिशन लेकर नहीं, स्वयं को प्रतिष्ठा के लिए नहीं। किसी महान वैष्णव जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितमृत लिखने के पहले, क्योंकि मैं 88 साल के उम्र में हो गया, मेरा हाथ फिर रहा है, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि वैष्णव लोगों ने मुझे अनुरोध किया है, सर वैष्णव के वृंदावन के, सर वैष्णव समाज, हरिदास पंडित विशेष रूप में उस समय जो अध्यक्ष, सब लोग उनको अनुरोध किया कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ लिखिए, और विशेष रूप में इनको तो नित्यानंद की कृपा था, किनके प्रति? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रति, नित्यानंद प्रभु ने इनको भेजे थे, जाओ वृंदावन, तुम्हारा सभी सर्व अभिष्ट पूर्ण होगा मेरी कृपा से। तो इसलिए कहे कि वैष्णव लोग ने आदेश दिया, बार बार कहने पर फिर मैं गया आदेश मांगने के लिए मदन मोहन के पास में, मदन मोहन के सामने खड़ा होकर जब हाथ जोड़कर उनको अपने मन की भावना को व्यक्त करते थे, क्या करूं मैं, लिखूं कि न लिखूं, सारे लोग मुझे ये प्रेरणा दे रहे, वैष्णव लोग ने आग्रह कर रहे बार बार कुछ चैतन्य कथा लिखने के लिए, तो तुरंत ही मदन मोहन की माला गिर कर नीचे गिर गया, तो पुजारी लाकर उन्होंने पहना और आज्ञा माला, मदन मोहन का आदेश मिल गया। तो इसी प्रकार लोचनदास ठाकुर कहते कि मैं गुरु जी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए फिर कुछ चैतन्य महाप्रभु की कथा को लिखने जा रहा हूं। इसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते कि नित्यानंद आदेश से, किसके आदेश से मैं लिख रहा हूं चैतन्य भागवत? नित्यानंद प्रभु के आदेश से। प्रभुपाद ने कहे कि जब कोई बद्ध जीव है इसको कोई आध्यात्मिक चीजों के बारे में कुछ लिखना नहीं चाहिए, जिसके पास में अभी तक भी 4 बद्ध जीव का लक्षण है, क्या? त्रुटि करना, धोखा देने का प्रवृत्ति, माया के द्वारा मोहित होना और अपुण्य इंद्रियां, ये 4 बद्ध जीव के लक्षण से जो युक्त है इसको कुछ आध्यात्मिक विषय में लिखना नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने चैतन्य चरित में प्रारंभ से लिखते हैं, क्योंकि जो भी लिखेगा उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगा, और वो अपने मनमानी से प्रसिद्ध बनने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पूजावान प्रतिष्ठा के लिए भी लिखना नहीं चाहिए। जब इसको किसी अधिकारियों ने, उनके सदगुरु से बा अन्य वैष्णव लोग ने अनुनय विनय करते हैं कुछ लिखने के लिए यदि, फिर वो केवल भक्तों की सेवा के लिए, बद्ध जीव को उद्धार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इसी भावना लेकर केवल कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना करना चाहिए। लोचनदास इस प्रकार अपने गुरु के आदेश को पालन करते हुए ये ग्रंथ लिखे हैं। कई घटनाएं चैतन्य और जो चैतन्य मंगल जो लिखे उन्होंने, इसको कहते बंगाल में एक विशिष्ट पद्धति है, पंचाली पद्धति, 5 लाइन में एक पद है? एक साथ में, तो उसी धारा में उन्होंने इसको लिखे हैं। विशेष रूप में ये छंद अलंकार से युक्त हैं। चैतन्य भागवत बहुत सरल है समझने में, लेकिन चैतन्य मंगल थोड़ा अलंकारिक भाषा में इसको लिखा गया है, पंचाली कहते कि जो छंद के आधार पर लिखा गया। और ये भी बड़े आग्रह के साथ जो बंगाली वैष्णव पढ़ते हैं है? इसमें एक घटना विशेष रूप में जो कि चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितमृत में वर्णन नहीं हुए, चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास लिए, संन्यास के लिए जब गए कटवा, उसी दिन रात है? पहले रात में इन्होंने किस प्रकार अपने पत्नी कौन विष्णुप्रिया देवी से भी वार्तालाप किए थे, और इनको अपने चतुर्भुज विष्णुमूर्ति भी दर्शन करा के उनकी मुंह को नष्ट कराए थे। ये सब घटना चैतन्य मंगल में वर्णन है, चैतन्य भागवत में या चैतन्य चरितमृत में वर्णन नहीं आता है। वो सुंदर कथा, कई कहानी जो कि चैतन्य भागवत में केवल सूत्र रूप में लिखा गया, तो उसको विस्तार रूप में बाल्यलीला को कौन लिखा? चैतन्य मंगल में इसको विस्तार रूप में लिखा गया। अंत्यलीला को जो लोग मध्यलीला और अंत्यलीला जो कि संक्षेप में लिखे थे वृंदावन दास ठाकुर, उसको मध्यलीला और अंत्यलीला को विस्तार रूप में लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लेकिन आदिलीला को सूत्रखंड और आदिखंड, ये चैतन्य वो तो 3 खंड है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत, आदिलीला मध्यलीला अंत्यलीला, लेकिन चैतन्य मंगल जो है 4 भाग में विभक्त है, सूत्रखंड फिर आदिखंड मध्यखंड अंत्यखंड, 4 विभाग है। तो इसलिए इसमें जो कुछ लिखा गया विस्तार से आदिलीला विशेष रूप में, नवद्वीप कथा को कई घटना चैतन्य मंगल में विस्तार रूप में लिखा गया है। और अभी आपके समय भी हो गया, चैतन्य मंगल की अंतिम कहानी, चैतन्य मंगल की समापन करते हैं, वहां पर एक कहानी आता है, सुनो लास्ट कहानी कह देते हैं। तो एक ब्राह्मण था, साउथ इंडियन ब्राह्मण, उसके नाम है राम मिश्र ऐसे कुछ था, तो उन्होंने बड़ा दुखी था, बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि उसे खाने पीना कुछ मिलता नहीं, तो बहुत दुखी, अपने प्रारब्ध इतनी बुरा था, वो कहीं मांगने जाने पर छत्र में सबको देते तो उसको नहीं देता कोई है। बड़ा दुखी था, पेट कभी नहीं भरता उसका, रोते रोते पूरे अस्थि कंकड़ासार हो गया, लेकिन भगवान की भजन करता था। तो पर देखकर सोचा कि मैं चलता हूं पुरी, जगन्नाथ प्रकृति में जगत के जो मालिक है वो कहां रहते हैं, पुरी में रहते हैं, जगन्नाथ ये कलयुग का धाम है, वो वहीं जाकर आश्रय करूंगा तो जगन्नाथ जी को मांगूंगा तो वो देंगे। तो पुरी आ गया, पुरी आकर जगन्नाथ जी के पास में बहुत रोया, जाकर बहुत जाता था, बहुत रोता था, प्रभु मेरे दारिद्र्य को नष्ट कर दीजिए, मुझे धन दे दीजिए, आपको सुदामा को इतना दे दिया, सबको दिया, कितने लोगों को कितना दिया, मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ दीजिए, मैं भूखा रहता हूं, रो रहा है, ऐसे ही जाकर बहुत प्रार्थना करते करते लेकिन कोई फल नहीं मिला है, कुछ जगन्नाथ कुछ नहीं दे रहे। तो बड़ा दुखी होकर एक बार कहा कि मैं 7 दिन फास्टिंग रहूंगा, यदि जगन्नाथ कुछ नहीं करेंगे, 8वें दिन में कुछ नहीं मिला तो मैं जाके समुद्र में क्या करूंगा, आत्महत्या कर दूंगा, समुद्र में घुस के बस शरीर को त्याग दूंगा। तो ऐसा किया, 7 दिन फास्टिंग भी रहा, बहुत रोया, प्रार्थना किया, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फिर गया समुद्र में जाकर, समुद्र में जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, तो ऐसे ही कुछ रो रहा था, रो रो के देखता कि समुद्र के अंदर से एक बहुत विशाल पुरुष, इतना बड़ा है कि पहाड़ के समान, विशाल पहाड़ के समान व्यक्ति प्रकट हुआ है, विशाल बहुत विराट व्यक्ति प्रकट होकर आस्ते आस्ते आकाश में ऐसे ही आकर फिर किनारे पर आठा आया और खड़ा होकर फिर अपने को साधारण मनुष्य जैसे रूप बना लिया, बनाकर फिर चलने लगा। तो बोला रही शायद मेरा प्रार्थना सुन के जगन्नाथ प्रकट हो गए, ये जगन्नाथ हो सकता, नहीं तो कौन समुद्र के बीच में से कौन प्रकट होगा ऐसा, जैसे कि यही जगन्नाथ है, मेरा इच्छा पूर्ण कर देंगे। तो इनका पीछा करने लगा, तो देखे कि वो तो जगन्नाथ है नहीं, तो कही क्या है व्यक्ति मेरे पीछे की पीछा कर रहा, क्या बात है। तो बोले कि आप बोलो आप कौन है, आपने देखा समुद्र के अंदर से प्रकट हुए, इतनी विशाल रूप धारण कर प्रकट हुए, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था, आपको देखकर रुक गया, और आपने विशाल रूप अभी छोटा बनाकर चलने लगे, आप है कौन, आप थोड़ा बताइए, मेरा समस्या ऐसा ही, मैं बहुत गरीब, खाने पीना कुछ नहीं मिल रहा मुझे, हमेशा मृत्यु जंत्रणा में सब मैं पीड़ित होता हूं, आप यदि कुछ कीजिए, मेरा दारिद्र्य नष्ट कीजिए, कुछ कुछ उपाय कीजिए। तो व्यक्ति कहा कि मैं जगन्नाथ नहीं हूं, आप जो जानना चाहते हो मैं बताता हूं, तो इसको एडवर्टाइजिंग मत करो, मैं विभीषण हूं। कौन हूं? विभीषण हूं, लंकापति विभीषण हूं, मैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने जा रहा हूं, मैं जितने अमर व्यक्ति में से मैं भी एक अमर हूं, मुझे भी अमर बना वरदान दिए रामचंद्र, तो इसलिए मैं वही भगवान जगन्नाथ जो रामचंद्र से अभिन्न है उन्हीं को दर्शन करने जा रहा हूं। किनको? जगन्नाथ जी को, आओ मेरे साथ। वो बोला पीछे पीछे चलते रहा, लेकिन वो विभीषण तो वहां गए नहीं जगन्नाथ मंदिर में, सीधे जाकर कहां घुस गए, काशी मिश्र के घर में, गंभीरा के अंदर जाकर चैतन्य महाप्रभु के पास में बैठे। वो भी ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण वेश बनाकर आए थे, ये भी ब्राह्मण, पीछे दो ब्राह्मण देखे, गोविंद ने कहा कि दो ब्राह्मण आ रहे हैं, महाप्रभु कहीं कौन आए गेट में खड़ा है, नहीं दो ब्राह्मण आपके दर्शन करना चाहते हैं, भेजो अंदर, जाकर बैठ गए। लेकिन ये ब्राह्मण दोनों को पहले कोई भी देखा नहीं था, सब लोग अपने अंतरंग भक्त महाप्रभु के बैठे थे, स्वरूप दामोदर बैठे थे, राय रामानंद बैठे थे, और सभी सब बड़ा देखे थे, लेकिन ये कौन से आज नया ब्राह्मण है। तो बैठे और जो विभीषण के बाजू में एकदम महाप्रभु ने बैठे, उससे बहुत अच्छी बात किए, सब पूछे सुख दुख है, कुछ चर्चा हो रहा था दोनों का, कोई कुछ समझ नहीं पाता था, वो दोनों अपना कुछ बात करते महाप्रभु और विभीषण। तब बात करते करते फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के बारे में बताया विभीषण ने कि सही, महाप्रभु बोले कि हाँ मैं जानता हूं उसको, ये बहुत ये अपना प्रारब्ध को भोगना नहीं चाहता है, प्रारब्ध को मेरा ऊपर डालना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो सुख दुख जितने अपने प्रारब्ध के आधार पर होगा इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन ये बड़े विचलित हो गया, अभी इतने सहन नहीं कर पाता है और बार बार मेरे पास आकर फुकारता है, आत्म सुसाइड करना चाहता है। तो ब्राह्मण बोलता मैं इनके पास तो कभी नहीं आई, क्या क्या बोल रहे हैं, मैं तो जगन्नाथ जी के पास में मंदिर में बोलता था और ये बोलते कि मेरे पास विषय। तो बोले कि ठीक है इसको नहीं, विभीषण के बोले कि लेकिन तुम्हें समझ गया, तुम्हारा मन में दया आ गया, तुम तो लंकापति हो, इसको दे दो कुछ धन, दे दो इसको, इसकी गरीबी चला जाएगा, मिट जाएगा। जो तुम दे सकते, भक्त भक्त ही केवल प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है भगवान, मैं भी इसका प्रारब्ध नष्ट नहीं करना चाहता हूं, ये भुगने दो इसको। लेकिन विभीषण कहे कि ठीक है आपकी जो आदेश है तो कुछ धन दे दूंगा। ऐसे थोड़ा बातचीत होकर फिर वो विभीषण आ गए बाहर, और ब्राह्मण वो भी आ गया। वो ब्राह्मण बोला कि विभीषण कहे ठीक है, अभी जगन्नाथ जी आदेश मिल गया और आपको मैं दे दूंगा कुछ धन। तो वो कहे कि जगन्नाथ कहां, आप तो जगन्नाथ मंदिर गए ही नहीं, आप तो यहां से गए, वो जो व्यक्ति बैठा था वो कौन है। तो बोला कि तुम अंधा है, ये जगन्नाथ जी को देखकर भी तू देख नहीं पाया, वही है आए सचाल जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर में बैठे हुए अचाल मूर्ति, लेकिन उन्हीं की चलंती रूप, कौन गौरांग के रूप में ये बैठे हुए, यही जगन्नाथ है, यही कृष्ण, यही राम, तुम पहचाना नहीं, तुम अधम है, विभीषण बहुत गाली दिया, तुमको धन ही चाहिए, ठीक है मैं धन दे दूंगा। तो बोला नहीं नहीं मेरे को धन नहीं चाहिए। रो ब्राह्मण रोने लगा, मुझे ले चलो फिर कहां, वही महाप्रभु के पास। फिर हम दोबारा आ गए लेकर, क्या अभी अभी गए तो फिर आ गए, गोविंद बोला कि तो फिर आ गए, बोले हो ठीक बोला बोला गए हैं। तो फिर वो ब्राह्मण ने अपने सारे गलती क्षमा मांगता है, किन से, महाप्रभु से, मैं आपको है? आप अभी मैं रेडी हो जाता अंत में, वो ब्राह्मण रेडी हो जाता किसके लिए, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए है? भक्त को भी अपने प्रारब्ध को भगवान को देना नहीं चाहता है, प्रारब्ध को स्वयं भोगना चाहिए है? जो अपने प्रारब्ध से दुख सुख भोगने का इसको जो लगा हुआ, इसको भोग लेना चाहिए, इसको भगवान के ऊपर डालना नहीं चाहिए। हम जो साधारण व्यक्ति विचलित हो जाते, लेकिन भक्त विचलित नहीं होता है। भक्त कभी नहीं कहता भगवान को मेरे प्रारब्ध को हंडाइए, मेरे प्रारब्ध को नष्ट कर दीजिए, ये नहीं कहता कभी भी है। अम्बरीश महाराज को भी प्रार्थना किया है, चाहे वो आ गया राक्षस खाने के लिए, कभी कहा कुछ मुझे रखा कीजिए नहीं है। तो इसलिए इसी अंतिम मैंने स्टोरी है चैत्र मंगल के, तो किस प्रकार वो ब्राह्मण फिर महान भक्त बनता है अंत में, जब उसके महाप्र कहे, लेकिन फिर उसकी जगन्नाथ के जब गौरांग महाप्रभु की शरण में आकर उसकी प्रारब्ध नष्ट हुआ, फिर वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लिया। ठीक है, हरे कृष्ण। चैतन्य मंगल की, श्री लोचनदास ठाकुर आविर्भाव तिथि की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।